वो सुनिए हिरण्यांगी क्या कह रही है। वो सुना रही है, राधे जब कन्हैया गौओं को धोने के लिए गौशाला जाते हैं, तभी माँ यशोमती वो तो इतना पुत्र स्नेह में डूबी हुई है कि वो तुरंत व्याकुल हो जाती है। कन्हैया के लिए भोजन बनाना है, भोजन बनाना है। और अब सब नौकर चाकर को कहती है, जाओ जाओ जल्दी रसोई में ये सब भोजन की वस्तुएं रखो। और फिर प्यार से व्याकुल चित्त से रोहिणी माता से कहती है, ओ सखी रोहिणी, देखो ना हमारे यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये बलराम और कन्हैया ही हर रोज गौओं को लेकर जाते हैं। ये वृंदावन तो इतना दुर्गम है, यहाँ घूमने की वजह से भोजन में रुचि ही नहीं रहती उनकी, और इसीलिए कल रात को तो जरा भी नहीं खाया उन लोगों ने। दिन ब दिन दुबले और पतले होते जा रहे हैं। क्यों, मैंने आज ही सुबह तो देखा कान्हा का पेट बिल्कुल पीठ के साथ सटक के लगा हुआ है। ओ सुमुखी, तुम जल्दी रसोई में जाओ और कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। माँ यशोमती रोहिणी मैया को ऐसा आदेश करके तब नौकर चाकर से कहते हैं, बारिद पयोद, तुम कान्हा और बलराम के स्नान श्रृंगार का सामान प्रस्तुत रखो। सुवासित जल लेकर जाओ और फिर सुगंधी तेल, उपटन, वस्त्र, अलंकार सब अपने अपने स्थान पर सजा के रखो। माँ यशोदा की आज्ञा पाकर नौकर चाकर अपने अपने काम में दिल लगाती हैं। स्नेहमयी मैया बलराम और कन्हैया के लिए बात देख रही है, और फिर जब देखती है कि अभी भी वे नहीं आ रहे हैं, तब एक नौकर से कहती है, रक्तक जाओ तो उनका लेकर आओ। वहाँ गौशाला में नंद महाराज कन्हैया से कहते हैं, बेटा तुम जल्दी से घर लौटो, तुम्हारी मैया राह देख रही होगी। जब माँ देखती है कि श्याम सुंदर लौट रहे हैं, तब मैया आनंद के अश्रु से उनका वसन भीग जाता है, स्तन से दूध बहने लगता है। कन्हैया से कहती है, बेटा जल्दी आओ, भूख नहीं लगी क्या, फिर घर आने में इतनी देर क्यों करते हो। यशोमती मैया अपने सुंदर हाथों से कन्हैया का अंग मार्जन कर रहे हैं, और वो देखिए कितने मीठे स्वर से कह रही हैं सखाओं को, बेटे तुम लोगों को भी तो भूख लगी होगी, अपने अपने घर जाओ और नहा धो लो, और फिर जल्दी जल्दी यहाँ भोजन के लिए आ जाना। फिर मैया कन्हैया बलदेव और मधु मंगल को लेकर घर में प्रवेश करती है। उसके बाद मैया आदेश करती है, सारंग कन्हैया को स्नान वेदी पर ले जाओ। तो सारंग नाम का सेवक कन्हैया को स्नान वेदी पर ले जाकर उनके सुंदर अंग से उनका वस्त्र खोलकर उनके अलंकारों को उतारते हैं, और फिर स्नान के उपयोगी वसन पहनाता है। देखिए तो श्याम सुंदर स्नान वेदी के उत्कृष्ट आसन में कितने सुख से बैठे हुए हैं, और ये सेवक है उसका नाम है पत्री। वो सोने के बर्तन में सुवासित जल लाया है और अब उनके चरण कमलों को धो रहा है। इसके बाद वसु कोमल वसन से उन्हें पोछ रहा है, और ये सेवक देखिए वो है सुबंध, वो नाई का बेटा है। वो श्याम सुंदर के हर अंग में सुगंधी नारायण तेल से मीठा मीठा मसाज कर रहा है। और ये सेवक है ना, उसका नाम है सुगंध। इसके हाथ में जो उपटन है वो पीले रंग का है और मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है। वो उससे श्याम सुंदर के अंग को मसाज कर रहा है। फिर उसके बाद ये दो जो सेवक है उनका नाम है स्निग्ध और कर्पूर। वाह, नाम भी क्या पाया है। और वे सुगंधि आमला की पेस्ट लेकर श्याम सुंदर के केश को अच्छे से संस्कार कर रहे हैं। और रक्तक और पयोध को तो आप पहचानते ही हैं, ये तो बड़े ही अच्छे सेवक हैं। वैसे सभी सेवक अच्छे हैं। ये सेवक वे ठंडे ठंडे जल से श्याम सुंदर के अंग को धो रहे हैं और फिर पतले वस्त्र से स्क्रबिंग अर्थात मार्जन रगड़ रहे हैं। कई सेवक छोटे छोटे सोने के घड़े में सुवासित जल लाकर उन्हें स्नान करा रहे हैं। और ये पत्री तब बहुत पतले और सुकोमल वसन से उनका सुंदर अंग पोछ रहा है। उनके केशों से जल निचोड़ रहा है। और अब देखिए वे कन्हैया को कितने सुंदर वस्त्र पहना चुके हैं। उनका वस्त्र है गोल्डन येलो कलर का, बिजली को भी मात दे दे, और दुपट्टा भी उसी रंग का। अब कन्हैया जाकर श्रृंगार वेदी पर बैठ जाते हैं। तो वो सेवक है ना, उसका नाम है कुमुद, वह आकर परफ्यूम्ड धुएं से उनके सुंदर बाल को सूखा और सुवासित कर रहा है। और अब मणि के द्वारा निर्मित कंघी से उनका केश संस्कार करके एक चूड़ा बांध देता है। इस सेवक का नाम है मकरंद। वो गोर रचना से श्याम की ललाट पर तिलक बना देता है और फिर कस्तूरी कर्पूर अगरू और कुमकुम का पेस्ट लेकर वे उनके पूरे अंग में सुंदर सुंदर डिजाइन बना देता है। इस सेवक को देखिए ना, इसका बड़ा प्यारा नाम है। इसका नाम है प्रेमकंद। वो उनके बाहों में सोने के कंगन, कानों में मकर कुंडल, सुंदर चरणों में रत्न नुपुर और वक्ष पर एक बहुत उजला मणिहार पहना देता है। गोविंद दास तो निछावर जाते हैं श्याम सुंदर के रूप पर। वे कहते हैं, मुख मंडलो जिति शरद सुधा करो तनुरुचि तरुण तमान चूराचारु शिखंड को मंडित मालती मधु करो माल। श्याम सुंदर का मुखमंडल इतना सुंदर है कि शरद पूर्णिमा के चांद के समान लग रहे हैं। उनका अंग इतना हैंडसम है कि वो एक तरुण तमाल वृक्ष की तरह दिखते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग। उनकी चूड़ा इतना सुंदर दिख रहा है, वो मोर पिच से सुशोभित है और चूड़ा के चारों तरफ मालती की माला है। ध्वनि ध्वनि बोनी नव नागर कानो रोही त्रिभंग भुवन मनो मोहन मधुर मुरली कोरु गान। धन्य धन्य है ये नया नागर, ये नया प्रेमिक कान्हा का जय हो। उसका वो त्रिभंग रूप सारे भुवन के मन को मोह लेता है और जब मुरली का मधुर तान छेड़ता है तब किसका दिल भला स्थिर रह सकता है। टोलो मोलो ओलो को किलो को झलो झलो कोई भांगु को धुनु अधुनान कुलोगति बड़ो तो विमोचनो लोचनो विषम कुसुम सरोबान। उनके घुंघराले बाल तलमल कर रहे हैं अर्थात हवा के झोंके से वे आ आकर गिरते रहते हैं उनके मुखमंडल पर। उनका तिलक इतना उज्जवल दिखता है जैसे कि कामदेव के धनुक भी टूट जाए उसके सामने। और जो अच्छे अच्छे खानदानी औरतें हैं उनका भी लज्जा भय शील सब कुछ तोड़ दे। उनकी आंखें ऐसी हैं, श्याम सुंदर अपनी आंखों से ऐसे बाण चलाते हैं, वे बाण तो फूलों के बाण जैसे प्यारे लगते हैं, पर है विषय ये वो इतना जहर घोल देते हैं कि कुलवती के दिल का आर पार हो जाता है। बाधुरी बंधु अधर मधु माखनो मधुर मधुर मृदुहास जशु आमोदे मदन मद मंथर भन तुरी गोविंद दास। उनके होंठ कितने प्यारे हैं, इतने मधुर हैं कि जैसे लगता है उसमें शहद लिपटा हुआ है। वो जब मृदु मृदु हंसता है तब अमृत टपकता है, ऐसा लगता है जैसे कि मदन देव बड़े आमोद में आ गए हैं और मद मस्त होकर हौले हौले चल रहे हैं। कवि गोविंद दास कह रहे हैं कि सच श्याम सुंदर को देखने से लगता है कि कामदेव को भी नशा आ जाएगा। अब तो बलदेव मधुमंगल और बाकी सखा भी हाजिर हो गए हैं, उनका स्नान भी हो गया है, सब अपने अपने अलंकार को धारण कर लिया है। और अब यशोमती मैया और रोहिणी माता दोनों आकर बलराम और कन्हैया का आरती उतारते हैं। अम्बा किलिम्बा जैसी गोपियाँ वे उनका यशोगान करती हैं, सखा भी जय जय कहते हैं। तब भागुरी मुनि आकर बलराम और कन्हैया को आशीर्वाद करते हैं। मैया अब आगे लाती है एक रत्नों से भूषिता एक गौ, उस गौ के साथ उसका बछड़ा भी है और दोनों को वेपीत वसन से सज्जित की हुई है। और वे कन्हैया के हाथों में देकर कहती हैं, लो काना मुनि को दान कर दो। तो कन्हैया मीठा मीठा हंसते हुए सम्मान के साथ मुनिवर को गौ और बछड़ा दान करते हैं। अब मैया कहती है, आओ आओ बच्चे, तुम सब अभी भोजनालय में जाओ अर्थात डाइनिंग हॉल में जाओ। वहाँ हमने मक्खन मिश्री और कितनी सारी मिठाई पकवान सब रखा है तुम लोगों के लिए। सखाओं के साथ बलराम और कन्हैया खुशी खुशी भोजन घर में चल पड़ते हैं। वहाँ भी मक्खन मिश्री मिठाई खाते हैं और फिर मैया हर एक को तांबूल भी देती है। अब वे घर से बाहर आकर खेलने लगती हैं। हिरण्यांगी कह रही हैं, यशोदा मैया ने प्यास से तुम्हारे लिए भी कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं। और धनिष्ठा उसके साथ कन्हैया का अधरामृत मिला दिया है। मैं भोजन घर में रति मंजरी के पास रखकर आई हूँ, राधे तुम सखियों के साथ उसे खा लो। तब राधा रानी परम आनंद के साथ सखियों को लेकर भोजन घर में जाती है और जशोमती मैया का वो भेजा हुआ मिठाई को खाकर, जिसके साथ श्री कृष्ण का प्रसाद भी मिला हुआ है, वो खाकर बहुत प्रसन्न होती है और आचमन करके ड्राइंग रूम में आकर बैठती है। वहाँ फिर वो तांबुल की सेवा करती है। अब देखिए कैसे सखियाँ मंजरियाँ सब स्थान और सभी बर्तनों को धोकर राधा रानी के पास आकर उनका उन्हें हवा करने लगती हैं। आइए अब चलते हैं हम नवद्वीप, देखते हैं हमारी प्राण प्रिय गौरांग सुंदर क्या कर रहे हैं। वो देखिए नवद्वीप में हमारे गौर सुंदर श्रृंगार वेदी पर भाव विभोर होकर बैठे हुए हैं। आप सब उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वो कौन है? अच्छा हाँ, ईशान भैया। वो आकर कह रहे हैं, ओ गौरांगा चलो चलो, अब ठाकुर जी की आरती होगी। माँ कह रही है कि ठाकुर जी की आरती को दर्शन करो। ऐसा सुनकर प्रभु हुंकार कर उठते हैं, जय राधे श्याम, और वे बाहरी दशा में आ जाते हैं। आप सब अपने अपने बाहरी दशा में आ जाते हो। स्वरूप गोसाई भी अपना गीत समाप्त करते हैं। गौर सुंदर अब आप सब लोगों को साथ लेकर श्री नारायण के जग मोहन में ठहर कर आरती का दर्शन कर रहे हैं। श्री गदाधर पंडित आरती कर रहे हैं श्रीमन नारायण की, और अब आरती समाप्त करके वे तीनों प्रभु को आरती दिखाते हैं और आप सभी भक्तों के ऊपर शंख से पानी ले लेकर छिड़कते हैं। अब गौर सुंदर आप सबके साथ श्री मंदिर और तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। आप भी प्रभु के पीछे पीछे जाकर तुलसी जी भी जलदान करते हैं, आप दंडवत कहते हैं, और अब ईशान भैया आकर कहते हैं, चलो गौर सुंदर अब ब्रेकफास्ट प्रसाद नहीं पाना है क्या? चलो चलो, सब कितने भूखे होंगे। तब प्रभु अब सब लोग के साथ भोजन घर में जाते हैं। शशि माता बड़े प्यार से मिठाई पकान सब आपको भोजन कराती हैं। और अब आप सब लोग उस कमरे में जाते हैं जहां भागवत पाठ होने वाला है। गदाधर पंडित भी गौर सुंदर का प्रसाद लेकर भागवत पाठ के घर में आते हैं और भागवत पाठ के लिए व्यास आसन पे बैठते हैं। गोस्वामी गुरुवर्ग और आप भी सब गौर सुंदर का प्रसाद ग्रहण करके एक एक करके भागवत पाठ के कमरे में आ जाते हैं। सामने तीन प्रभु बैठे हुए हैं, उनके पीछे वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं। आप भी बैठे हुए हो अपने गुरुदेव के पीछे। गदाधर पंडित गोसाई तुलसी जी श्री चंदन पुष्प और माला से पहले श्री भागवत की पूजा करते हैं और फिर पाठ करना शुरू करते हैं। आप भी वहाँ पे बैठे हुए हो और आप सुन रहे हो कैसे गदाधर पंडित सुमधुर स्वर में भागवत पाठ कर रहे हैं। श्री भागवत का प्रसादी चंदन माला श्री स्वरूप गोस्वामी तीनों प्रभु और भक्त वृंद को दिया जाता है। यहाँ पर शशि माता भी अपना जलयोग अर्थात ब्रेकफास्ट खत्म करके वे अंतपुर में जाकर रसोई करने में जुट जाती हैं। गौरांग सुंदर भागवत श्रवण करते हुए वे भाव विभोर हो जाते हैं। वे अपने आप को नंदा लय में पाते हैं, डूब जाते हैं वृंदावन की मधुर लीला में। वहाँ पर क्या हो रहा है? कुंडलता आती है, राधा रानी भी नंदालय में आती है और रसोई करती है। प्रभु के साथ साथ आप भी ब्रज के भाव में मगन हो जाते हैं। प्रभु जब ब्रज के भाव में विभोर होते हैं तब कितनी सुंदर दिखते हैं। शोचिरो नंदनो गोरा चांद सकल भुवन मोहन भांग। शची माता का प्यारा बेटा है गोरा चांद, वो इतना सुपुरुष है कि सारे भुवन को पूरे विश्व को अपने मोहन जाल में फंसाए। नवो अनुराग भावे भेलो भोर अनुखनो कौन जो नयने बहे लोर। उसके दिल में इतना नया नया अनुराग का भाव भरा हुआ है कि हर वक्त उसके सुंदर काले नैनों से आंसू बहते हैं। पुलों के पूरी तो तोनू गदो गदो बोल खैने थीर कोरी ची तो खैने होती लोल। उसका पूरा अंग पुलक से भरा हुआ है, गद गद वचन बोल रहा है। कभी तो स्थिर है और कभी तो धरती पर लोट पोट खाता है। कभी तो उसके आंखों से अश्रु निकलने लगता है। ओइचे विभावत विभावित सहचर संग परम आनंद कहे प्रेम तरंग। इसी तरह से सहचरों के साथ अपने पार्षदों के साथ हमेशा ब्रज के भाव में विभावित रहता है। और परमानंद कवि परमानंद कह रहे हैं कि प्रेम तरंग उठता है प्रभु के चारों तरफ, भक्तों को सिंचन करता रहता है ये प्रेम तरंग। वो देखिए जावट में किशोरी जी कैसे बैठी हुई है वहाँ बालकनी में, और वो राह देख रही है कुंदलता की। जब वो कुंदलता के बारे में सोच ही रही है इतने में कुंदलता प्रफुल्लित होकर नंदालय से आ जाती है और सीधा जटिला के कमरे में जाती है। क्या कहती है कुंदलता सुनिए तो। निशि पर भाते तबे नंदिर घरुनी दास ताशी डाकिया कहे प्रिय बानी। मैया जटिला जैसे ही प्रभात हुआ अर्थात सुबह हुआ तो नंद महाराज की घरणी जशोदा मैया सब दास दासी को बुलाकर बड़े प्रिय वचन से बोली, अमर जीवन धन कानाई बोलाई लालीबे पालीबे तारे तुमरा सबाई। ये कानाई और बोलाई मेरा जीवन धन है, तुम लोग इनका ख्याल रखना, इनकी देखभाल करना। जार जे काज बाछा करो मोन दिया आमी यार की बोली वो बुझो बिचारिया। जिसका जो भी काम है वो दिल लगा कर करो, मैं और क्या कह सकती हूँ। तुम लोग अपने आप सोच कर ही काम करना। रानी रुदार बोल सुनी दास दासी आवेश कौड़ाए कर्म प्रेमानंदे भाषी। रानी की ऐसी प्यारी बोल सुनकर दास और दासी ये बड़े लगन के साथ घर का सब काम करने लगे। कन्हैया वहाँ पर मौजूद हैं तो वे प्रेम आनंद में सराबोर रहते हैं। ब्रज का हर प्राणी प्रेम आनंद में सराबोर रहता है तो फिर नंदालय के बारे में क्या कहें। कुंदलता आनी कथा कहे जशोमती राधा रे आनो हो बाचा कोरिया संगोती। जशोमती मैया ने कुंदलता से कहा है कि
बेटी जाओ जाके राधा को ले आओ अपने साथ। শুনি পর নাম করি চলে কুন্দলতা জ্যোতিলারি নমুষ করি নিবেদয়ে কথা। যশোদা মৈয়া কো প্রণাম করকে কুন্দলতা যাকর অব জ্যোতিলা কো নমস্কার করকে সব কুছ কহতি হ্যায়। দেখি আনন্দিত হইল জ্যোতিলা চিত শেখর চলিলতার পাইয়া ইঙ্গিত। কুন্দলতা কো দেখকর জ্যোতিলা ভি বহুত আনন্দিত হো গই অর কবি শেখর भी वहाँ पर कुंडलता के साथ खड़ा है और इशारे के लिए इंतजार कर रहा है। देखिया कुंडलता ज्योतिला उन्मता परम आनंदे नाचाए धोरिया कोरी कोरे तितिलो आखी लोरे कुशाल बारता पूछाए। कुंडलता को देखकर तो ज्योतिला इतनी खुश हो जाती है कि वो परम आनंद से नाचने लगती है। वो कुंडलता को गोदी में ले लेती है और आंखों के पानी से उसे भिगो देती है। पूछती है कि सब कुशल तो है ना बिटिया। ओमोर बाछनी सत्य ही कहिनी कहो भी निकट ही मोहरी तो है नो कुलगती जगती नहीं कोती हमारी विश्वास तुम्हारी। जटिला कहती है बिटिया मुझे सच सच बताना, मुझे तुझ पे बड़ा विश्वास है क्योंकि तुझ जैसा कुलवती तो इस पूरी धरती पर और कोई नहीं है। गोप पूर भोरी जो तो हूँ सुंदरी काहू को ना रहू लाज। इस गोप पूर में जितनी सुंदरी है सबके शर्म बेशरम है। तो है न पुतिवृति ना देखो ज्योति श्योति जोशे लोखिनी समाज। तो जैसी पतिव्रता तो मैंने और देखा ही नहीं है। सच जितने गोपियों का समाज है उनमें तो तू ही रानी है। हरुषि कुंदलता तरुषि कहे कता कतहु विनय व्यवहारये चतुर शिखर जड़ती अंतर कत जे जतने सुधारये। कुंदलता हर्षित होकर बड़े प्यार से कहती है और बहुत विनय करती है। कुंडलता का बर्ताव बड़ा ही मीठा है। कवि शेखर कह रहे हैं कि कुंडलता तुम बड़ी चतुर हो, तुम गुड़िया के अंतर को अच्छे से जानती हो। अब देखिए कुंडलता गुड़िया जटिला को कैसी रिझाती है। वो कह रही है शेजी ब्रजेश्वरी ना जाने चातुरी परम उदास से हो जखन जा बोले तखनी ता भूले सभारी समान ले हो। वो ब्रजेश्वरी जशोमती मैया है ना जटिला मैया, वो जरा भी चातुरी कोई चालाकी नहीं जानती है। वो परम उदार है। अगर आप कभी उससे कोई कटु भाषा बोल भी दिया तो वो तुरंत भूल जाती है और वो सबसे समान प्यार करती है। है देखो आरिजा माँ शेजन हमारे पाठाई लो शातुरे देखिते तोमार पा। ओ जटिला मैया वही जशोदा माँ ने मुझे जल्दी जल्दी भेजा है तुम्हारे चरण दर्शन करने के लिए। चूल खौर धोरी दर्शनो उपरी शेषव कहिलो रानी शेषव सुनीते हैनो लय चीते पाषाण गलये जानी। आहा वो नंदे रानी वो अपने दांतों में घास पकड़ के ऐसे ऐसे बोल बोली कि वो सब सुनकर पत्थर भी गल जाएगा। जशोदा मैया ने मुझसे कहा है कि बेटी कुंडलता तुम जाओ जाके मौसी के चरण में पकड़ कर कहो कि उनकी बहू को तुम बड़े ही गोपन में छुपा कर मेरे पास लाओगी। माशीर चारों ने कोहिया पहुँचने गोपते आनी बा बहू अलोखीते पथे आशीर्वाद तुरीते जेमते ना देखे केहू। तुम उनकी बहू को इस तरह से लाना बेटी कुंडलता कि जल्दी जल्दी भी लाओ उसे यानी कि शॉर्टकट से लाओ और इस तरह से लाना कि जिसे किसी को पता ही ना चले कि उनकी बहू आ रही है, कोई देखने ही ना पाए उनकी बहू को। शुनिया मिनोती उलोशी जोड़ोती चोलीला रायेर घरे। कुंदलता की ऐसी मिनती सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है और वो राधा रानी के कमरे में जल्दी से जाती है। कुंदलता कौरी शोपिया बोधुरी रानी रे आशीष कौरी। और वो कुंदलता के हाथों में अपनी बहू को सौंप देती है और नंद रानी यशोदा मैया को भी ढेर सारा आशीर्वाद भेजती है। राय कौर लोहिया निजो शिरे दिया कहे कातोर बोल, कुलेर धरम पुतेर शरम सकल राखो भी मोर। जटिला कहती है कि राय के हाथों को लेकर वो अपने सर में रखती है और बड़े ही कातर होकर अर्थात बिल्कुल रोते हुए सुर में कहती है राधा रानी से, देखो बहू तुम कुल का धर्म रखना, मेरे बेटे का लाज रखना, यशोदा तनय नामानी विनय ताहारे अमर डर। ये जो यशोदा का लल्ला है ना, वो तो कुछ भी नहीं मानता है, उसी से मुझे बड़ा डर लगता है। निभृति केतनी आशीवी जातनी चाहते ना हाशे पौट। और तुम बड़े जतन से केयरफुली तुम आना, लोग हंसने ना पाए क्योंकि इन लोगों का क्या है, हमारे कुल में तो कोई कलंक नहीं है, मेरी बहू तो साध्वी है, सब गुण उसमें मौजूद है, उनमें गौरव है, मिठास से भरपूर है। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं ना, ये लोग जलते हैं हम लोगों से क्योंकि मेरी बहू इतनी अच्छी है। वो लोग तो हमेशा कोई ना कोई छेद ढूंढते फिरते हैं कि कैसे दाग लगाया जाए। और हाँ, वो नंदन भी तो अतिशय चंचल है, उसका भी क्या करें। और लेकिन ब्रज रानी की आज्ञा है, उसे भी तो अनादर नहीं करना चाहिए। भगवती पूर्णमासी भी कहती है कि हमें अपनी बहू को वहाँ भेजना चाहिए, तो अब क्या करें। कुंदलता कही तुम्ही देवो मोही चरण पड़ोसी तोर, शेखरेर ठाई कोनो डर नाई से बने भरोसा मोर। कुंदलता कहती है कि नहीं मैया, मैं चरण स्पर्श करके कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहू पर आंच भी नहीं आने दूंगी, मेरे हाथों में तुम सौंप रही हो तो मैं इसे सही सलामत तुम्हारे पास लौटा दूंगी। और मेरे साथ ये कवि है ना शेखर, ये साथ है तो कोई डर नहीं है, वो तो मेरा बहुत बड़ा भरोसा है। अब देखिए बूढ़ी जटिला क्या क्या कहती है राधा रानी से। कहती है जरती जतन करी कहे सुनो सुंदरी सखी संगे करह पयान, उड़नी घोड़नी माथे देखिया चलिबे पथे लखीते ना पारे जानो आन। वो बड़ी प्यार से कहती है सुनो सुंदरी बहू, तुम सखी के साथ अब नंदालय में जाओ, देखो तुम्हारा दुपट्टा सर से खिसक न पाए और रास्ते में संभाल कर जाना, राह देख देख कर जाना और ये भी ख्याल रखना कि कोई तुम्हें न देखने पाए। बरोर झियारी बटो कुले शिले रहो छोटो सब गुणे हो परो बीन, थाकियो सबार माझे बुझीबा आपन काजे, आनी आर जीव कत दिन आमी आर जीव जीवो कत दिन, याद रखना बेटी कि तुम वृषभानु राजा की बेटी हो और हमारे घर की बहू हो, तुम्हारा कुल तुम्हारा शील किसी मामले में छोटा तो नहीं है,
बड़े घर की बेटी हो और बड़े घर की बहू हो, सभी गुण तुम में मौजूद है। सबके बीच रहना, अकेली मत रहना और सिर्फ अपने काम से ताल्लुक रखना। मैं भला कितना दिन और जीऊंगी, मेरा क्या, लेकिन तुम्हारे शील का ख्याल तो रखना पड़ेगा तुम्हें ही। श्रद्धाए विदाई कोरी जोटीला चलिलो घरे, उलोषित रसवती राधे, रंगिनी संगिनी तार সেই সব উপহার যৌন ধ্বনি পুরাইতে সাধি। আর ইস তরহ সে বড়ে প্যার সে জটিলা বিদা করতি হ্যাঁ, কমরে মে লোট জাতি হ্যাঁ। রসবতী রাধা রানী ও উল্লসিত হো জাতি হ্যাঁ, উনকি সখিয়া রঙ্গিনী হোকর অর্থাৎ মস্তি কে সাথ সভি সামগ্রী राधा रानी को साथ लेकर नंदगांव जा रही है। देखिए राधा जी कैसी चल रही है। गजेंद्र गमन जिनी चौले राय बिनोदिनी सुघर सुखीर हेली अंगो, कहे शेखर राय पूछते पूछते जाए रजनी विलास रस रंगो। हौले हौले राधा रानी नंदीश्वर की ओर जा रही है। रास्ते में सखियां यही बतिया रही है कि पूछ रही है कि कल रात को क्या क्या हुआ, नागर ने कौन सी रस भरी बातें की, सखी ये तो बताओ। और राधा रानी उनका जवाब देते हुए नंदीश्वर की ओर जा रही है। यहाँ पर जावट में आप देख रहे हो कि कुंदलता जटिला को किसी भी तरह समझाकर वो जल्दी जल्दी राधा रानी के कमरे की तरफ आ रही है। देखिए प्यारी कितनी खुश हुई होती है, वो हंस हंस कर कहती है, सखी कुंदलती मुझे लग रहा है कि ब्रजेश्वरी मैया ने जरूर मुझ पर बड़ी कृपा की है, इसीलिए तो तुम अभी अभी मेरी सासू माँ से हो करके यहाँ कोई खुशखबरी देने आई हो। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ईश्वरी की ये मीठे वचन सुनकर कुंदलता का दिल तो उल्लास से नाचने लगा और उनके मुख मंडल पर जैसे चांदनी छा गई और वो हंसती हुई कही, सखी राधे जब तुमने सब कुछ समझ ही गई हो तो और देर ना करो, लो सब सखियों को साथ लो और जल्दी से चलो, हम ब्रजेश्वरी के वहाँ चलते हैं। ओ हिरनी जैसी नैनो वाली, तुम तो जो भी बनाती हो उसका स्वाद स्वर्ग के अमृत को भी लज्जा दे दे। तुम इतनी अच्छी रसोई करती हो कि पूरे ब्रज मंडल में उसकी प्रसिद्धि छाई हुई है। ओ सखी महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें क्या वर दिया है, तुम जो भी रसोई करोगी वो अमृतमय होगा, जो भी उसे खाएगा वो दीर्घायु होगा, निरोगी होगा, बलशाली होगा और हर दुश्मन पे विजय पाएगा। इसी वर की बात ब्रजेश्वरी मैया जब से सुनी है तब से वो मन में ठान चुकी है कि अगर कान्हा को कुछ खिलाएगी तो वो बस तुम्हारे हाथों से, इसीलिए तो हर रोज तुम्हें बुलाती रहती है। और हमारी श्याम सुंदर कितनी बार कितने राक्षसों का वध किया है, ये तो तुम्हारे हाथों का रसोई खा खा कर ही ना। ब्रजेश्वरी मैया भी इसी में दृढ़ विश्वास रखती है, इसीलिए हे शशिमुखी जल्दी करो। हाँ तुम्हें और एक राज की बात बता दूं, ब्रजेश्वरी अपने बेटे को नहीं देखती है तो कैसा आकुल हो जाती है, उसी तरह तुम्हें भी अगर वो एक दिन ना देखे तो पागल हो जाती है। राधा रानी का अंतर तो आनंद से भर गया, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरों में उदासी भरकर बोली,
सखी कुंदलती, जो भी कह रही हो सब सही है, लेकिन तुम तो सब कुछ जानती हो। अब कोई जो कुलवती है, सती साध्वी है, हर रोज दूसरे के घर में जाना, ये क्या उचित है? तुम ही बताओ ना। खास करके तुम्हारा जो देवर है, उसका यश तो पूरे ब्रजमंडल में छाया हुआ है। मैंने तो सुना है कि जो कुलवती नारी है, उसके ऊपर उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही होती है। अब देखो, मैं एक कुल स्त्री हूँ, मेरे कुल की रक्षा करना, मेरे परिवार का धर्म रक्षा करना मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ। इसलिए हे सखी, मैं तुम्हारे साथ नंदीश्वर में नहीं जाना चाहती। कुंदलता समझ गई कि राधा रानी के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन आंखों में झूठा असम्मति दिखा रही है। बड़ी खुश हो गई वो और हंसती हुई उसने कहा, सखी राधे, ठीक है तुम कुल धर्म की रक्षा करो, पर सुनो, दुर्वासा जैसे मुनि जब तुम पे कृपा की है तो तुम्हारा कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए देर ना करो सखी, जल्दी चलो। बुढ़िया जटिला अंदर से सब बातें सुन रही थी और ये राधा रानी और कुंदलता को भी मालूम था कि बुढ़िया उनकी बातें छुप छुप के हमेशा सुनती रहती है। अब वो बहुत खुश हुई कि उनकी बहू जाने से मना कर रही है। वो प्रसन्न होकर राधा रानी के पास आकर देखे कैसे कह रही है, ओ सती कुंदलती, तुम पे तो मेरा बड़ा विश्वास है, इसीलिए तो वधु को तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ। वैसे तो बुढ़िया की बातें हमेशा जली कटी होती है, लेकिन सच बताऊँ आप लोगों को, वो हमारी ईश्वरी से बहुत प्यार भी करती है। कौन नहीं है इस दुनिया में जो हमारी ईश्वरी को प्यार न करे भला। वो राधा रानी के निष्पाप चेहरे की तरफ देखकर शांत मधुर वचन में बोलती है, बिटिया, जो सती होती है उसको पति के भवन से एक पग भी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए, और खास करके तो ये कन्हैया जो ब्रज में लंपट शिरोमणि कहलाता है, उसके वहाँ तो जरा भी नहीं जाना चाहिए। सही बात है, लेकिन फिर भी राधे, देवी पौर्णमासी ने कहा है और नंद रानी भी कितनी विनयपूर्ण प्रार्थना कर रही है, उनकी बातों को भला हम कैसे टालें? इसीलिए तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए कह रही हूँ। तुम सोचो मत, श्री हरि वो तुम्हारे सतीत्व की हमेशा रक्षा करेंगे। ओ सुमुखी, तुम्हें मैं श्री हरि के कर कमलों में समर्पण करती हूँ और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। अब जटिला तो नारायण भगवान को ही श्री हरि कह रहे थे, लेकिन हम सखियाँ भी तो सुरसिका है ना, हम तो अच्छे से समझती है कि हरि का अर्थ होता है मदन मोहन, इसीलिए हम सब हंस पड़ती है। लेकिन ईश्वरी हमारी तरफ आंखों से इशारा करती है, चुप भी रहो, तो हम चुप हो जाती हैं। अब कुंदलता राधा रानी के हाथ को पकड़कर जल्दी जल्दी जावर के बाहर ले जाती है। देखिए सखियां कैसी चल रही हैं। राधा जी के सामने कुंदलता है, दाएं तरफ ललिता है, बाईं तरफ विशाखा सखी है, पीछे अनंग मंजरी और बाकी सब सखियां हैं, उनके पीछे रूप मंजरी और सभी मंजरियां हैं, और उनके पीछे पीछे आप भी जा रही हैं।
आप सब के हाथों में कन्हैया की प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि लड्डू, मोदक, कितने ही तरह के फरसान और मिठाइयाँ। और भी कुछ ऐसे सब मसाले और सामग्री हैं जो कुछ स्पेशल है और राधा रानी को रसोई के वक्त चाहिए होगी, वो सब आप लेकर जा रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है, रास्ते में आप कृष्ण कथा कहती हुई जा रही हैं। एक सखी कहने लगी, याद है एक बार हमारी प्राण प्यारी ने मान किया था तो नागर शेखर ने कौन सा रंग रचाया था? हाँ हाँ याद दिलाओ, सब सखियाँ हंस पड़ती हैं। अरे वो ही वाक्या क्यों उसी दिन तो हुआ, शुनिया मालार कथा रोशी को सुजान ग्रोह विप्रो बेशे जान कानूर भवन। हाँ जैसे ही कन्हैया ने सुना एक सखी माला की बातें कि राई प्यारी वो तो मान करके बैठी हुई है, तुम कुछ तो करो खाना, तो वो झट से ब्राह्मण का वेश धर लिया, पाजी लोए कोखे फिरी दारे दारे उपनी तो राई पाशे भानुराज पूरे। वो अपने बगल में एक पंचांग लिया और फिर एक द्वार से दूसरा द्वार जाने लगा, हर द्वार पे कह रहा था मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे हाथ दिखा दो मैं भविष्य बता दूंगा। और ऐसा कर करके श्याम सुंदर राधा रानी के पास आई। बरसाने में विशाखा देखिया तभी निबास जिज्ञासे श्यामल सुंदर लोह लोह करी हासे। विशाखा तो देखते ही नाक भौं चढ़ाकर कही, क्यों भैया कहां से आना हुआ तुम्हारा? तो श्याम सुंदर वो बड़े प्यार से मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं कन्हैया, विप्रो को है घोर मोर खुशती ना नौगोर विदेशी बैराई खाए सुनो है उत्तर। ब्राह्मण कहने लगा, मैं तो हस्तिनापुर में रहता हूँ, देश विदेश घूमता रहता हूँ, यहाँ वहाँ हाथ देखता फिरता हूँ और इसी तरह से मेरी रोजी रोटी चलती है। प्रश्नो देखा बार तौरे जेदा के आमारी ताहार बारिते जाए हरोशो अंतरे, जो भी मुझसे भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहता है मुझे बुलाता है और मैं भी प्रसन्न होकर उसके घर चला जाता हूँ। दीजो चंडी दासे बोली एक गृहाचार्य प्रश्ने ते पारोग बड़ गणनाते आर्य, তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে ইহারে জড়ায়ে ধরো উত্তর পাইবে। দ্বিজ চণ্ডীদাস কে রহে হ্যাঁ কি এ বহুত বড়ে জ্যোতিষ আচার্য হ্যাঁ আর ইয়ে কিসি কা ভি হাত দেখ কর বতা সকতে হ্যাঁ কি ভবিষ্য কেসা হোগা, ইয়ে বহুত বড়ে গণক হ্যাঁ সব কুছ গিন কর বতা দেতে হ্যাঁ। সখিয়া तुम्हारे दिल में जो भी है बता दो। और राधा रानी से चंडीदास जी कह रहे हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं पूछना है राय, तुम सिर्फ इसे बाहों में भर लो, तुम्हारा सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर सखियां सब हंस पड़ती हैं, राधा रानी का भी चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, वो भी मुस्कुराने लगती है। सच नागर शेखर कैसी कैसी लीलाएं रचाते रहते हैं राधा रानी के प्यार में, कभी सखियों के प्यार में। और इसी तरह कृष्ण कथा में डूब कर सराबोर होकर बड़े प्रेम दिल से सखियां जा रही हैं नंदीश्वर की ओर। चलिए हम भी चले उनके साथ।